आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज के हमारे इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th से जो हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो लिखा है नेल्सन मंडेला ने। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। नेल्सन मंडेला जो थे, जिस प्रकार से हमारे कंट्री में महात्मा गांधी जी है, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका नाम का एक देश है। और कौन से कॉन्टिनेंट में है? वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। वहां पे साउथ अफ्रीका नाम का देश है और उस देश में नेल्सन मंडेला जैसे बहुत ही बड़े, हम कह सकते हैं, क्रांतिकारी वहां पे रह रहे थे। कुछ ही सालों पहले उनका दुखद निधन हुआ। तो उन्होंने ये एंटायर चैप्टर लिखा है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है कि नेल्सन मंडेला जी के जो विचार थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे हमारे महात्मा गांधी जी से। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम किस प्रकार से इस एंटायर जो हमारा चैप्टर है उससे गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम पैरा बाय पैरा रीड करेंगे बच्चों। यहाँ पे जो एक्टिविटी जो आप देख सकते हो पेज नंबर 2 पे, वो हम एंड ऑफ द क्लास में, मतलब कि जो हमारा चैप्टर जब एंड हो जाता है तब हम वो एक्टिविटी फिनिश करेंगे। उससे पहले हम ये एंटायर पूरा जो लेसन है ना वो पैरा बाय पैरा डिस्कस करेंगे, है ना। मैं आपको पर पैरा में रीड करूंगी, उसका आपको मतलब समझाऊंगी और उसके बाद ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, जो एक्टिविटी आपको सॉल्व करने के लिए, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट वगैरह, वो हम लेसन कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? तो यहाँ पे आपको options दिए हैं, United States of America, South Africa, Australia. तो जैसा कि आपको बच्चों पता होगा कि जो United USA और South Africa और Australia, ये तीनों के तीनों जो देश हैं वो ब्रिटिशों के अंडर थे। तो उनको कॉलोनियल रूल के मतलब कॉलोनियल रूल उनके ऊपर था। सो एंड साउथ अफ्रीका एक लेटेस्ट एक कंट्री ऐसी है जो हाल ही में लिबरेट हुई है, या फिर हम कह सकते हो हाल ही में जिनको इंडिपेंडेंस मिला है। और कौन सी ईयर में उनको मिला है इंडिपेंडेंस? 1993 में। सो इसका जवाब तो आपको क्लियरली मैं बता सकते हो इसका जवाब, वो है साउथ अफ्रीका। अब मैं आपको बताती हूँ एपर्थेड क्या होता है। सो एपर्थेड इज बेसिकली एक उनका पॉलिटिकल सिस्टम होता था साउथ अफ्रीका में। और ब्रिटिशर्स जो थे वो यही माना करते थे कि जो स्किन कलर है ना बच्चों, मतलब कि जो ब्रिटिश लोगों का जो स्किन कलर है परफेक्ट वाइट एकदम, तो उनको वो बहुत ही सुपीरियर लगता था। वो रेसिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। रेसिज्म का मतलब ये है कि किसी भी इंसान के स्किन कलर को लेके उसकी टैलेंट कहो आप, या फिर उसका इंटेलिजेंस वो डिफाइन किया करते थे हमारे मतलब तब के जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग। और उनको लगता था कि जो ब्लैक कलर या फिर ब्राउन कलर के जो लोग होते हैं वो किसी भी मतलब गवर्नमेंट हाई पोस्ट के काबिल नहीं होते, या फिर वो इंटेलिजेंट नहीं होते। तो ये सारे इनके ख्यालात थे और जो कि बहुत ही बुरे थे, क्योंकि हमें बच्चों किसी भी इंसान के कलर के ऊपर उसकी इंटेलिजेंस या फिर उसकी बुद्धिमत्ता को हम नहीं देख सकते। मैं तो ये भी कहूंगी किसी भी इंसान के लैंग्वेज को लेकर, अगर कोई इंसान है जो प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाता तब भी हमें उस इंसान के नॉलेज को जज नहीं करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इंग्लिश, माना कि इंग्लिश इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, बट किसी भी इंसान के इंग्लिश को लेके आप उसकी नॉलेज जज नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों आप अगर बाहर के देशों में, बाहर की कंट्रीज में अगर हम देखें तो वो लोग प्राउडली अपनी लैंग्वेज बोल देते हैं। जैसे कि जापान में जापानीज, वो लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं। उनको उनका ये मानना होता है कि जो भी उनका फील्ड हो, जैसे कि आप मानो कोई इंसान अगर क्रिकेट अच्छी खेल रहा हो तो उसको उसमें परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि उसको अपनी जो स्किल्स है वो इंग्लिश में बतानी ही चाहिए, या फिर अगर वो नहीं बता पाता तो वो इंसान इंग्लिश खेलने के लायक ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। Why? Because उस इंसान को बस क्रिकेट खेलना वो उसकी स्किल होती है। बट होता ये है मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों कि हम किसी भी इंसान को उसकी लैंग्वेज को लेके या फिर उसके कलर को लेके हम उसको जज करते हैं, विच इज वेरी बैड। तो वन थिंग विच वी गेट टू लर्न ओवर फ्रॉम, ये एक छोटा यू नो बिफोर यू रीड वाला, ये जो फर्स्ट जो हमने चार लाइन्स पढ़ी उसमें मैं आपको यही बता सकती हूँ, या फिर हम ये लर्न कर सकते हैं कि किसी भी इंसान को बाहरी उसका जो बाहरी तौर तरीका होता है उससे जज करना बहुत ही गलत है। तो एपार्टाइड एक ऐसी सिस्टम थी जिसके तहत साउथ अफ्रीका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो ओरिजिनल सिटीजन्स थे साउथ अफ्रीका के, उनको बहुत ही गंदे तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता था। जैसे कि आप मान सकते हो, उनके लिए अलग बस स्टैंड्स थे, उनके लिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर वो जॉब उनको इजीली नहीं मिलती थी, या फिर अगर मान के चलो अगर कोई बस बस है, बस में सारे लोग बैठे हुए हैं और एक ब्लैक इंसान भी वहां पे बैठा है और कोई सीट नहीं है, और अगर कोई वाइट इंसान या फिर ब्रिटिश अगर उस पर्टिकुलर बस में चढ़ जाता है, तो उस ब्लैक इंसान को वो सीट अपनी उस ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश को देनी पड़ती थी, क्योंकि उनको ये उनके मन में बस छपवा दिया जाता था कि आपका स्किन कलर ब्लैक है तो आप किसी भी सीट को या फिर आप उस जो सम्मान है समाज में उसके आप काबिल नहीं हो, विच वॉज वेरी बैड। वी कैनॉट जज समवन बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर। तो ये सारी चीजें होती थी, उनके लिए स्कूल्स अलग होते थे, उनके लिए आप कह सकते हो जो ओशियंस या फिर जो बीचेस होते हैं ना, दरिया, वो उनके लिए अलग हुआ करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू गेट मिक्स्ड विद द ब्रिटिशर्स, या फिर उनको अगर ब्रिटिशर्स को अगर वो टच वगैरह करते हैं तो वो उनको बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से उनके साथ ब्रिटिशर्स बिहेव करते थे, उनको मारा पिटा जाता था। सो वन थिंग विच वी गेट टू नो ओवर हियर इज दैट एपार्टाइड जो सिस्टम था वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेड सिस्टम था। जैसे कि आप अगर देखो हमारे कंट्री में कास्ट में अगर आप बिलीव करते हो, अनटचेबिलिटी में अगर आप बिलीव करते हो, यकीन करते हो, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो अनटचेबिलिटी है उसको बैन किया गया है। अब ये भी हो सकता है कि कई लोग इसको फॉलो कर रहे हो आज भी, वी नेवर नो राइट, बहुत बड़ा देश है हमारा। अगर कोई ये इस गंदी प्रैक्टिस को अगर कोई इंसान कर भी रहा है, तो अगर हम गवर्नमेंट के पास अगर इस चीज की कंप्लेंट करें पुलिस स्टेशन में, तो उस इंसान को बहुत बड़ा जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को, या फिर जिस इंसान को उसने ह्यूमिलेट किया है उसको। बट एपार्टाइड एक ऐसा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम था जो उनके मतलब पॉलिटिकली उनको लीगल उनको करार दिया गया था, मतलब कि आप ऐसे अगर किसी साउथ अफ्रीकन ब्लैक के साथ अगर आप बिहेव करते हो तो वो बिल्कुल भी सही है। सो दे वर नॉट पीनलाइज्ड, ये जो लोग ऐसे बिहेव करते थे उनको पनिशमेंट नहीं मिलती थी। सो आते हैं अगले पैरा पे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्टाइड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने non-violence के तहत एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ी थी साउथ अफ्रीका में, जिसके तहत उन्होंने अपने जिंदगी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साल थे, 30 साल उन्होंने जेल में बिताए थे। क्यों? क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। बस वो ही नहीं, बट उनके जो साथी थे, जैसे कि हम देख सकते हैं महात्मा हमारे देश में, जैसे महात्मा गांधी जी जिस प्रकार से आंदोलन करते थे नॉन वायलेंस को लेके, नॉन वायलेंस का सहारा लेके, तो नेल्सन मंडेला और उनको जितने ज्यादा लोग सपोर्ट किया करते थे, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला को मतलब साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी कहा जाता है, और उनके साथ भी बहुत ही लोग उनका सपोर्ट किया करते थे। तो साउथ अफ्रीका में 1994 में इलेक्शंस हुए, जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुई ब्रिटिशर्स से तब, और इन 1994 वहां पे इलेक्शंस लिए गए और नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, जो कि एक नई आजाद हुई एक कंट्री थी। सो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with the news items from the BBC of 10th of May 1994. तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक कटआउट दिया है, वो हम रीड करते हैं और उसका मतलब जान लेते हैं। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries. of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings of Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites and colorates celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो ये कटिंग है बीबीसी की, मतलब एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की ये कटिंग है 10th of May 1994 की, जिन्होंने जिसने वहां मतलब उस पर्टिकुलर पेपर में लिखा था कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक पहले मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और तीन सेंचुरी, एक सेंचुरी मतलब कि 100 साल होते हैं, तो 300 साल बाद व्हाइट रूल जो है वो एंड पे चला, मतलब वो खत्म हो गया, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, और उनके पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज ANC, और ये पार्टी जो थी वो 252 इलेक्शंस, मतलब जो वोट्स थे वो जीती, सीट्स जीती आउट ऑफ 400, जो कि मोर देन 50% है, और एक डेमोक्रेटी जो थी मतलब कि लोकतंत्र साउथ अफ्रीका में आ गया. सो द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स, मतलब एक बिल्डिंग थी वहां पे, प्रिटोरिया नाम की एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां पे ये इलेक्शन हुए, और जो बहुत ही बड़े बड़े हस्तियां थी पूरे देश की, मतलब सारे पूरे एंटायर वर्ल्ड की, वो यहाँ पे मौजूद थे. और बच्चों आप देख सकते हो नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लाइन कही है, मैं आपको उसका मतलब बता, मतलब पहले हम रीड करते हैं. उन्होंने कहा, नेवर नेवर Again, will this beautiful land experience the oppression of one by another? तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो नेल्सन मंडेला जी ने ये नहीं कहा कि वाइट लोगों का ऑपरेशन हम ब्लैक्स पे नहीं होगा, या फिर ब्लैक लोग इस प्रकार से बिहेव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. उन्होंने क्लियरली बोला कि वन बाय अनदर, मतलब ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, इसका मतलब है कि उनके मन में व्हाइट्स लोगों ने जो भी उनके साथ गलत चीजें की थी उसके लिए नफरत उनके मन में बिल्कुल भी नहीं थी. एंड बिकॉज ऑफ द सेम ही सेड, मैं उनके कुछ और भी उनके मतलब जो उनकी स्पीच थी, उनके स्पीच में से और भी वर्ड्स थे कि उन्होंने कहा था कि हम पूरे जो ब्लैक जो कम्युनिटी है हमारे साउथ अफ्रीका में, हम किसी भी वाइट इंसान को नफरत नहीं करते, और आगे चल के हम इस जो चीज ये वाइट लोगों ने जो की है हमारे साथ उसको हम कभी भी नहीं दोहराएंगे, और हमारे मन में वाइट लोगों के लिए बिल्कुल भी हेट नहीं है, हम एक कंट्री की तरह एकजुट होकर साउथ अफ्रीका के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत हमारा जो देश है उसके लिए हम मतलब हम उसके लिए बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइसेस करेंगे और एक अच्छा नेशन हम बनाएंगे. तो इन हिज स्पीच उन्होंने हेट जो थी या फिर नफरत को उन्होंने बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया था, एंड दैट इज वाई बच्चों वी कैन सी कि इतने मतलब हाल ही में इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है. जब हम उसको वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तब बहुत, साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी उतनी तो मैं नहीं कहूंगी कि उतनी ज्यादा हाईफाई नहीं होगी, भले ही वो हाईफाई नहीं होगी, पर फिर भी अगर उनकी एंटायर जो उनका स्ट्रक्चर देखा जाए उसको अगर देखते हुए, साउथ अफ्रीका ने एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट किया है, और इसका रीजन ये है कि उनके मन में नफरत वगैरह इन चीज के लिए जगह नहीं थी या फिर नहीं है. उनके मन में बस एक ही लक्ष्य है कि साउथ अफ्रीका को एक अच्छा और एक सक्सेसफुल कंट्री बनाना है. सो इस पर्टिकुलर जो मौका था वहां पे बहुत ही मोर देन 1 लाख लोग वहां पे मौजूद थे जो कि नेल्सन मंडेला को सपोर्ट कर रहे थे. तो बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपके नेक्स्ट पेज पे, वो हम इस लेसन ये खत्म होने के बाद हम सॉल्व करेंगे. तो बिफोर दैट तो शुरुआत करते हैं हमारे लेसन को. 10th May dawned bright and clear for the past few days. I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो यहाँ पे बच्चों आप साइड में आप मतलब भी देख सकते हो, besieged का मतलब है to be surrounded closely by. सो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, कि आज का ये जो दिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े डिग्नेटरी साउथ अफ्रीका के सॉइल पे गैदर हुए हैं, और एक पहला ये मतलब पहला इवेंट होगा जहाँ पे साउथ अफ्रीकन लोगों को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिला है, या फिर इतना ज्यादा उनको इतना इतनी बड़े बड़े लोग हस्तियां साउथ अफ्रीकन सॉइल पे रिस्पेक्ट देने के लिए साउथ अफ्रीका को मौजूद है. सो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन अ लवली सैंड स्टोन एम्पीथिएटर formed by the union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो फिर भी आप यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि नेल्सन मंडेला ने भले ही कहा था कि यहाँ पे हम एक ऐसी जगह पे हम मतलब इकट्ठा हुए हैं जहां से पूरे साउथ अफ्रीका पे राज होता था एक व्हाइट सुप्रीमेसी का, यानी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे थे जो कि रेसिस्ट थे. पर उन्होंने ये नहीं कहा यहाँ पे कि अभी यहाँ पे ब्लैक रूल है या फिर ब्लैक रूल रहेगा. इस प्रकार के वर्ड्स उन्होंने जानबूझ के वहां पे अवॉइड किए थे. एंड बच्चों, नेल्सन मंडेला हमें ये भी कह रहे हैं कि उनका जो गवर्नमेंट है वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट है. इसका मतलब है कि वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं, भले ही सामने आने वाला इंसान ब्लैक हो या फिर व्हाइट हो. अगर वो जस्टिस मांगने आ रहा है तो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उसको जस्टिस बिल्कुल दे देगी. तो यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है एम्पी थिएटर. इसका मतलब है अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मेनी रोज ऑफ सिटिंग्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम. तो यहाँ पे एक ऐसे रूम को मतलब एम्पी थिएटर कहा जाता है जिसके ऊपर रूफ नहीं होता, छत नहीं होती उसकी, बस बच्चों वहां पे लोगों को बैठने के लिए जगह होती है, और वो जगह ऐसी होती है कि रोल्स होते हैं, मतलब हाइट्स पे कुछ हाइट छोड़ के, ताकि जो एंड में जो इंसान बैठा है उसको भी जो इंसान बोल रहा है उसको वो देख सके. सो ऑन दैट लवली ऑटम डे I was accompanied by my daughter Jizani. On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president. Then Thambo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. तो मतलब कि यहाँ पे उनकी अब आगे स्पीच है कि नेल्सन मंडेला ये पूरा जो सीन है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या क्या हुआ था उस दिन. तो कह रहे हैं कि ऑटम का दिन था, ऑटम का दिन था मतलब कि ऋतु है ऑटम. मैं अपनी बेटी के साथ था वहां पे उस जगह पे, और पोडियम मतलब कि जो स्टेज है वहां पे मिस्टर डी क्लर्क थे. ही वॉज द फर्स्ट स्वोन इन एज द डेप्यूटी प्रेजिडेंट. की वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे वहां पे मौजूद थे, वो शपथ लेने वाले थे. और वहां पे थाम्बो मेबेकी नाम के फर्स्ट स्वॉन इन डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे. सो जब अपना खुद का उनका टर्न आया तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनकी स्पीच क्या थी वो उन्होंने यहाँ पे लिखी है, तो हम वो पहले रीड करते हैं. टूडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must have been born a society of which all humanity will be proud. तो मतलब कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उनके ऊपर 300 साल से भी ज्यादा जो अत्याचार हुए हैं ब्लैक लोगों पे, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो एक गलती थी, वो एक एक्सीडेंट था, एक डिजास्टर के तौर पे था जो कि हम ह्यूमैनिटी के ऊपर था. तो उन्होंने यहाँ पे बच्चों ये नहीं कहा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो गलत लोग थे या फिर उन्होंने जानबूझ के साउथ अफ्रीकन्स के साथ इतनी बदसलूकी की. तो उन्होंने जानबूझ के ये जो सारे वर्ड्स है ना हेट्रेड वाले, तो वो उन्होंने अवॉइड किए हैं, है ना. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज to be host to the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come up to take possession with the people of our country of what is, after all, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो बच्चों यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम सारे के सारे जो लोग हैं वो इंटरनेशनल डिग्निटरीज जो हैं, मतलब कि सारे कंट्रीज से वहां पे लोग जो गए थे उनको थैंक यू कह रहे हैं वो नेल्सन मंडेला, क्योंकि उनका वहां पे प्रेजेंट होना साउथ अफ्रीका के मतलब जो इंडिपेंडेंस डे है या फिर नेल्सन मंडेला का जो शपथ विधि है वहां पे उनका इन सारे डिग्निटरीज का मौजूद होना इसका मतलब ये है कि वो लोग जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि जस्टिस मतलब कि अच्छा शासन हो, फॉर पीस यानी कि जो शांतता हो, शांति हो साउथ अफ्रीका में पूरी, और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानव को एक इंसान होने का दर्जा देना, इस सारे चीजों को वहां पे वो लोग मौजूद है उनका रिस्पेक्ट देना ही है कि वहां पे जो लोग हैं वो इन सारी चीजों को मानते हैं, इसका ये मतलब होता है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चों नेल्सन मंडेला यहाँ पे कहते हैं कि वो लोग मतलब हम यहाँ पे अब जो शपथ ले रहे हैं वो सारे लोग साउथ अफ्रीका को ना बस इन सारे गलत चीजों से ही लिबरेट करने वाले हैं, बट उनको इन सारे मतलब पॉवर्टी यानी कि गरीबी से भी वो लिबरेट करेंगे, डिप्राइवेशन यानी कि कोई भी चीज ना मिलना उससे, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जिस प्रकार से लोग मतलब डिस्क्रिमिनेट होते हैं यानी कि उनको एक अलग तौर तरीके से बिहेव किया जाता है उनके साथ, तो ये सारे तौर तरीकों से साउथ अफ्रीका को वो लिबरेट करेंगे, और ना ही बस वाइट सुप्रीमेसी से ही नहीं बट ये सारी जो गलत चीजें हैं उससे भी साउथ अफ्रीका को वो इंडिपेंडेंट करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड will again experience the oppression of one by another. तो ये मैंने आपको ये जो लाइन है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन की थी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो यहाँ पे बच्चों नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कभी भी हमारा जो कंट्री है वो इस प्रकार की जो घिनौनी हरकतें हैं उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा। Sun shall never set on so glorious a human achievement. यानी कि सूरज का ढलना एक मेटाफर की तरह पे बच्चों यहाँ पे यूज किया गया है। सूरज का ढलना का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी भी साउथ अफ्रीका को ये सारी गंदी चीजों का एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा और एक ग्लोरी यानी कि एक बहुत ही बड़ा फेम, बहुत ही बड़ा सक्सेस साउथ अफ्रीका को मिलेगा, और ये जो ह्यूमन अचीवमेंट है यानी कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीकन लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए झगड़ा है या फिर उन्होंने फाइट बैक की है, एक आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, तो ये एक अचीवमेंट के तौर पे वहां पे देखा गया है। और नेल्सन मंडेला कहते हैं लेट फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि फ्रीडम जो है वो हमेशा प्रिवेलेंट रहे, कंटिन्यू रहे साउथ अफ्रीका में, भगवान अपना मतलब जो ऑलमाइटी गॉड है वो फ्रीडम साउथ अफ्रीका के ऊपर यूं ही बनाए रखे, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो बच्चों यहाँ पे दो तीन डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इमेंसिपेशन का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, डिप्राइवेशन का मतलब है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली। यहाँ पे बच्चों ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है वो हम लेसन के एंड में डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलते हैं अगले पैरा पे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एस पिक्योलियर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो यहाँ पे बच्चों ये कहा गया है कि सारे जो लोग थे वो एकदम से ऐसे अचंभित और भौचक्के रह गए जब उन्होंने अपनी मतलब उन्होंने अपने आईज जो थी जो उन्होंने ऊपर उठाए तो उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे, जो प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स थे या फिर जो मिलिट्री थी वो वहां पे सारे लोग मौजूद थे, एक प्रकार का वो अपना डिसिप्लिन दिखा रहे थे पूरे वर्ल्ड को कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका कंट्री के तौर पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी आर्मी उतनी ही डिसिप्लिन है, और आगे जाके जब 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 उनको यू नो नीड होगी कि देश को उनकी नीड होगी इस मिलिट्री की, तब वो अपना सारा जो मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है वो साउथ अफ्रीका के ग्लोरी में लगाएगी। सो वहां पे दिखाया गया था, मतलब वो लोग जता रहे थे जो मिलिट्री थी वो, कि साउथ अफ्रीकन कंट्री के लिए उनकी जो लॉयल्टी है, उनका जो फेथफुलनेस है, उनका भरोसा जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए हमेशा बरकरार रहेगा। ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दे आर चेस्ट बेडेक्ट विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, सेल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। It was not unmindful of the fact that not so many years before they would have not been saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो यहाँ पे बच्चों नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मतलब वो लोग जो पुलिस वगैरह जो हाई ऑफिशियल्स थे वो लोग नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे, तो एक जमाना था जब वो नेल्सन मंडेला को याद आता है कि कुछ दिन पहले अगर ये लोग मेरे सामने होते तो वो मुझे अरेस्ट करके जेल में डालते, पर क्योंकि अभी जो वाइट सुप्रीमेसी है उसका एंड हुआ है, जो गलत रूल था उसका एंड हुआ है, तो उसके तहत अब उनके मन में भी यही है कि नेल्सन मंडेला उनके प्रेसिडेंट है, तो उनको जब जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने जब नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया तब वो बस नेल्सन मंडेला को ही सैल्यूट नहीं था पर उनका जो पोजीशन था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका उस पोजीशन को उनका वो सैल्यूट था, और अगर वो अरेस्ट करते थे नेल्सन मंडेला को पहले तो वो अपनी बस ड्यूटी के लिए ही नेल्सन मंडेला को अरेस्ट करते। तो यहाँ पे हम ये देखने को मिलता है यहाँ पे हमें कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला के मन में किसी दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं भरी है, भले ही उस इंसान ने नेल्सन मंडेला के साथ कुछ भी किया हो। तो फिर आगे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब उन्होंने ऊपर देखा बाद में तो इम्पाला जेट्स जो थे वो जो स्पेशल जेट्स होते हैं वो उन्होंने स्मोक रिलीज किया, और वो जो स्मोक था वो साउथ अफ्रीकन फ्लैग का था, और उसमें कौन कौन से कलर थे, उनमें थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, और ये सारे कलर्स जो है वो साउथ अफ्रीकन फ्लैग में है। सो द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डीएस स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। यानी कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो दो नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका के वहां पे गाए गए थे। बच्चों आप जानते होंगे किसी भी देश के जो है वो एक ही नेशनल एंथम होता है, जैसे कि हमारे देश में नेशनल एंथम है जनगण मन, बट साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम्स हैं, एक है ब्लैक्स का नेशनल एंथम और दूसरा है व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम। यहाँ तक कि बच्चों साउथ अफ्रीका जो पूरी कंट्री है वहां उनके तीन कैपिटल हैं, हमारे कंट्री की राजधानी जो एक ही है न्यू दिल्ली है, बट अगर आप साउथ अफ्रीका में देखो वहां पे उनके तीन तीन नेशनल कैपिटल हैं और उनके दो नेशनल एंथम हैं। तो इस प्रकार से जो वाइट्स थे उन्होंने सिंग किया नकोसी सिकेल अफ्रीका, और ब्लैक्स जो थे उन्होंने रिपब्लिक का पहला वाला पुराना वाला उन्होंने एंथम सिंग किया मतलब गाया, जिसका नाम था डीएस टेम DIESTEM। तो ये वाला उन्होंने ओल्ड जो अफ्रीकन रिपब्लिक थी उनका एंथम था वो उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल एंथम के तौर पे गाया। तो बच्चों यहाँ पे कुछ थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनका हम मतलब जानेंगे। स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी कि जो स्मोक छोड़ गए थे ना बच्चों जो जेट प्लेन्स वो बहुत उनका एक स्पेक्टेकुलर एरे कहा गया है उनको, मतलब कि इम्प्रेसिव डिस्प्ले था वो। नॉट अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब है कॉन्शियस ऑफ या फिर अवेयर ऑफ। शेवरॉन का मतलब है अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, और despised का मतलब है had a very low opinion of. तो बच्चों, that's all for this particular class. हमारे आगे आने वाले lectures में हम remaining जो lesson है उसको learn करेंगे और वहाँ के जो question answers है उनको भी solve करेंगे. Thank you so much and take care.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.